ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते हैं, तुम सब बच्चे युद्ध के मैदान पर खड़े हो, खड़े हैं सब युद्ध के मैदान पर, लेकिन तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है? माया के साथ। तो माया कैसे लड़ाई करती है हमारे से, कैसे आक्रमण करती है? दुश्मन है ना, तो दुश्मन तो आक्रमण करता है। बाबा हम बच्चों को सद्बुद्धि देते हैं, ज्ञान के बल से सद्बुद्धि बाबा से मिलती है, लेकिन माया क्या करती है, इस सद्बुद्धि पर ही वार करती है। तो बुद्धि पर ही वार करती है, और बुद्धि पर जब वार करती है तो क्या हो जाता है, हमारा निश्चय डावाडोल हो जाता है, क्योंकि निश्चय भी तो बुद्धि से ही करना होता है, चाहे खुद पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, हर बात पर निश्चय चाहिए ना। और माया उसी बुद्धि पर वार करके उस निश्चय को ही डावाडोल कर देती है। और किसको डावाडोल करती है? हमारी हिम्मत को डावाडोल कर देती है। हम हिम्मत रखते हैं माया को जीतने की, और माया उस हिम्मत को ही डावाडोल कर देती है, हिम्मतहीन बना देती है। और तीसरी कौन सी बात पर माया वार करती है? हमारे संबंधों पर, क्योंकि मोह के वश हो जाते हैं, तो मोह के वश हो जाते हैं तो फिर सारी गीता ही इसी पर है, अर्जुन मोह के वश हो गया, और मोह के वश हो गया तो लड़ाई नहीं लड़ सका, परंतु जैसे उसको समझ आई तो लड़ना शुरू किया माया से। तो बाबा ने कहा कि माया इन तीनों पर आक्रमण करती है, बुद्धि से पहले निश्चय पर आक्रमण करती है, फिर हमारी हिम्मत पर आक्रमण करती, निश्चय तो रहता पर हिम्मत हार जाते हैं, और तीसरा थोड़ा मोह हमें खींचता है, इसलिए भी हम माया से हार खा लेते हैं। तो हमारी लड़ाई है अब माया से, तो लड़ाई पर कौन सा गीत होगा? ये कहानी है दिए और तूफान की। माया तूफान बन के आती है, और ये छोटा सा दिया कैसे डगमगाता है, लेकिन उसको निश्चय जो भगवान पर है, उस निश्चय के कारण वो हारता नहीं है, और आखिर तूफान मैदान से भाग जाता है। तो ये किसकी कहानी है? हमारी कहानी है। तो आज बाबा जी इसी कहानी को कई रूपों से समझाया है, तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 27/5/2025 है। मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। श्री कृष्ण के चित्र को देखो, याद करो, उसका मुख स्वर्ग की तरफ, हथेली पर स्वर्ग है, और पैर नरक की तरफ, नरक को लात मार रहा है। तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए क्या करना चाहिए? नरक से किनारा कर हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, तो तो बाबा कहते इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो, लेकिन बुद्धि का योग बार बार नरक के तरफ जाता है, तो इसीलिए बाबा को बार बार सावधान करना पड़ता है कि बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। प्रश्न है, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? जैसे तो हम कहते हैं घर जाना है, सतयुग में आना है, ऊंच पद पाना है, ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन सूक्ष्म और ऊंची मंजिल कौन सी है और उसे पार कौन कर सकते हैं? उत्तर, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते हो, माया तुम्हारा मुंह नरक की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है, उन्हीं तूफानों को पार करना यही है सूक्ष्म मंजिल। मोटे रूप से तो पता है आपको कहाँ जाना है, लेकिन सूक्ष्म मंजिल उसको पार करना है, तूफानों को पार करना यही है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़े, निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। निश्चय और हिम्मत के आधार पर नष्टो मोहा बनकर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना यह है मेहनत। संबंधों में भी देखते हैं, पिता ज्ञान में चलता है, बच्चा ज्ञान में नहीं चलता है। अब वो कहे मुझे नरक में जाना है, बाप कहता है स्वर्ग में चलो, नहीं नरक में जाना है, तो बाप को नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। ठीक है, तुमको जो चाहिए करो, फिर मोह नहीं रखना है कि मैं तो इसका बाप हूं ना, मैं जो चाहूं कहूं वही वो करे, ऐसे आजकल होता नहीं है, इसलिए मोह निकाल देना होता है। तो विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना यही है मेहनत। तो गीत बजा है निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल है, हाँ समझदार है, वो अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं इस गीत का। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है, फेरा है ना, नर्क की तरफ हमारा मुंह था, और बाबा के बने तो बाबा ने हमारा मुंह फेर दिया। बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है, अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते हैं। पिता नया घर बनाता है तो ऑटोमेटिकली बच्चों का मुंह उस पुराने घर से फिरकर नए मकान नए घर तरफ जाता है। ये कब तैयार होगा, कब तैयार होगा, यही पूछते रहते हैं ना, जब नया घर बनता है। अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है, कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर हम सुख धाम में जाएंगे। इस दुख धाम से तो सबको जाना है, कोई भी रहना नहीं है इस दुख धाम में। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं कि सबको इस दुख धाम से जाना है। बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, ये भी बाबा सबको बता रहे हैं। अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र। जिनको बुद्धि में है मुझे स्वर्ग में की तरफ जाना है, वो पवित्र रहेंगे, क्योंकि अब पवित्र तो स्वर्ग में जाएगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र, और हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। समझो, अब घर में कैसे संघर्ष चलता है, समझो बाप का बुद्धि योग हेवन की तरफ है और बच्चे का बुद्धि योग हेल की तरफ है, तो दोनों एक घर में रह कैसे सकते हैं? एक बच्चे का मोह हेल की तरफ और बाप का मोह हेवन की तरफ, तो एक घर में रह कैसे सकते हैं? हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है ही पांच विकारों तरफ, बच्चे का वो हेल तरफ जाने वाला और वो बाप उसका हेवन तरफ जाने वाला, दोनों इकट्ठे रह न सके। फिर बाबा कहते फिर भी रहना है, घर में ही तो रहना है, बाप छोड़ के तो नहीं आएगा, कहेगा मुझे नहीं रहना है, मैं सेंटर पर आ जाता हूँ, छुट्टी नहीं देगी बहन, बाबा भी छुट्टी नहीं देंगे, रहना तो उस वहीं है। तो दोनों इकट्ठे रह न सके, बड़ी मंजिल है। अब यहाँ ही संघर्ष चलता है, बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह हेल की तरफ है, हेल तरफ जाने बिगर रह नहीं सकता, बाप देखता है बच्चे की स्थिति को, फिर क्या करना चाहिए, बाप को क्या करना चाहिए? क्या होंगे, यहाँ भी कई बैठे होंगे, पिता बैठे हैं, माँ बैठी है, वो तो बाबा की तरफ है और बच्चे नहीं मानते, तो रहना तो घर में ही है, तो बाबा कहते फिर क्या करना चाहिए? जरूर घर में झगड़ा चलेगा, कहेंगे ये भी कोई ज्ञान है, दुनिया वाले कहेंगे ये भी कोई ज्ञान है, हा? बच्चा शादी न करे ऐसे कैसे चलेगा, बाहर वाले भी कहेंगे माँ बाप को ऐसे कैसे होगा बच्चा शादी न करे। ग्रस्त व्यवहार में रहते तो बहुत है ना, यहाँ भी कईयों के परिवार में ये समस्या तो होगी। ग्रस्त व्यवहार में रहते तो बहुत है ना, बच्चे का मुख हेल तरफ है, वो चाहता है मैं नरक में जाऊं, बाप कहता है नरक तरफ बुद्धि योग नहीं रखो, परंतु बाप का भी कहना मानता नहीं, फिर क्या करना पड़े? भाई लोग जिनको है ये प्रॉब्लम वो क्या करते हैं, कोई बता सकता है क्या करते हैं? हाँ बाबा ने बता दिया, नष्ट मुआ बनना पड़ेगा। तो बाप, परंतु बाप कहते नरक तरफ बुद्धि योग नहीं रखो, परंतु बाप का भी कहना नहीं मानता, फिर क्या करना पड़ेगा? इसमें बड़ी नष्टो मोहा स्थिति चाहिए, ये सारा ज्ञान आत्मा में है, ज्ञान तो आत्मा में है ना कि हमको नष्टो मोहा बनना है। बाप की आत्मा कहती है इनको हमने क्रिएट किया, ये मेरा बच्चा है, मैंने इसको पैदा किया है, मेरा कहना नहीं मानता। थोड़ा दुख होता है ना पिता को जिसने पैदा किया उस बच्चे को और वो बच्चा विरोध करे बाप का, तो पिता को थोड़ा दुख होता है, मेरा कहना नहीं मानता। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं, फिर बुद्धि चली जाती हेल तरफ, चलो वो तो ब्राह्मण बना ही नहीं बच्चा, हेल तरफ ही जाना है। परंतु कई फिर बच्चे बाबा के बनते भी हैं, फिर बुद्धि चली जाती हेल के तरफ। कोई तो ब्राह्मण भी बनी है, फिर बुद्धि चली जाती हेल तरफ, तो वो जैसे अब बाबा के बने, बाबा से प्रतिज्ञा की, फिर भी वो हेल की तरफ चला गया, तो बाबा कहते वो जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे, पहले से भी बदतर हो सकते हैं। तो बच्चों को समझाया गया है ये है ज्ञान सागर की दरबार, वो दिखाते ना इंद्र की दरबार, अब ये है ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है, और उस इंद्र की दरबार में कौन कौन थे? पुखराज परी, नीलम परी, माणिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं उन परियों के, वो नाम है। नीलम परी, पुखराज परी, माणिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना, और वो परियां डांस करती थी। परियों को हमेशा दिखाते हैं, उनका पैर धरती पर नहीं होता, वो जैसे ऊपर ही ऊपर डांस करती है, पंख है ना उनको दिखाते हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है। तो वो परियां कोई ऐसी थोड़ी होगी जो ऐसे पंख से डांस करती होगी, ये ज्ञान डांस है। किस्म किस्म की परियां हैं, वो भी पवित्र चाहिए, वो परियां भी तो पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए, क्या किया वो एक परी ने, वो नर्क के मनुष्य को ले आई इंद्र सभा में, तो सब परियों को बदबू आने लगी, मनुष्य आया, मनुष्य आया है। आदम्बू आदम्बू ऐसे लिखा शास्त्रों में, आदमी की बदबू आ रही है, तो परियों को बदबू आने लगी। तो फिर क्या किया इंद्र ने, क्या किया वो परी सहित वो आदमी को नरक में भेज दिया, जाओ पत्थर बन जाओ, वो पत्थर बन गए। तो अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। इसमें बहुत ही पावन चाहिए, ये मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए क्या होता है, ऊंची मंजिल है, चढ़ते गिरते रहते हैं, तो क्या होता है, इसीलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है, धीरे धीरे पाता है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे तो कोई भी जानते नहीं, शास्त्रों में भी ये ज्ञान नहीं है, इस प्रकार से नहीं है जैसे बाबा समझाते हैं। इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ, फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है, एक ही थप्पड़ से गिरा देती है माया। थोड़ा निश्चय हुआ और एकदम माया निश्चय परिवार कर गिरा देती है। तूफान है ना, छोटा सा दीवा, उनको तो तूफान एक ही थप्पड़ से गिरा देता है। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। गाया भी हुआ है, अबलाओं पर अत्याचार हुए, तो बाप समझाते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। इसी पर ही तो सारा झगड़ा है ना, इसी पर कई कहते हैं ना, ये काम विकार को छोड़ो, ऐसे जो कहते हो ये बंद करो कहना, तो तुम्हारे पास बहुत वृद्धि होगी। बाबा कहते यही तो मेन धारणा है, इसलिए हमें कोई क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें तो क्वालिटी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हारी बहुत नफरत आनी चाहिए, तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं अभी, बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं, आगे ये बात नहीं थी, पहले तो पता ही नहीं था बाबा का बनने से पहले कि ये काम विकार ये महाशत्रु है, आगे तो बात नहीं थी, हेल तो अभी है ना, द्रौपदी ने पुकारा है, ये अभी की बात है, एकदम कलयुगंत की बात है, महाभारत के समय की बात है, जो द्रौपदी ने पुकारा अभी तो वो ज्यादा ही पुकार है, ये अभी की भी अभी की बात है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। ये गोले का चित्र बहुत अच्छा है, बाबा क्यों गोले को महत्व देते हैं, क्योंकि इसमें गेट वे टू हेवन है। इस चित्र को देख के बाबा कहते देखो सब आत्माएं इस संगम से ऊपर जाती है, आत्मा ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बाबा कहते गेट वे टू हेवन इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे, सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इससे समझा सकेंगे, क्योंकि सीढ़ी में तो केवल भारत के उत्थान पतन की कहानी है, फिर भले साइड में दिखाया आत्माएं ऊपर जाती है, पर वो सीढ़ी से थोड़ा अलग दिखाया ना, और सभी धर्मों का जो है वो तो चक्र में ही दिखाया। तो बाबा कहते इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे, सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इससे समझेंगे। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है, बाबा के पास नए नए चित्र ले आते थे, मुझे याद है कैसे वाटरलू मेंशन बॉम्बे में उस समय नए वो सीढ़ी का चित्र बना था, निर्वैर भाई ने खास वो बनवाया था और बाबा के पास लेकर आया, तो बाबा ने चित्र देखा, बाबा ने उसमें इतनी करेक्शंस की, बच्चे आपने ये तारीख नहीं लिखी है, बच्चे ये नहीं लिखा है, वो नहीं लिखा है, बहुत करेक्शंस के, और फिर अल्टीमेटली यहाँ कैसे अंत में वो इतना अच्छा चित्र बन गया सीढ़ी का, सब कुछ है उसमें बाबा ने करेक्शंस की। तो वो अब हमने देखा है वाटरलू मेंशन के हॉल में निर्वैर भाई ने वो बिछाई, इतनी बड़ी सीढ़ी का वो चित्र लेकर आए थे, और ये करेक्शन ब्रह्मा बाबा ने किया, बाबा उस समय बॉम्बे में थे। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। बाप कहते हैं आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूं, पहले से थोड़ी सब डायरेक्शन मिलते हैं, ये कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है, बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते हैं। बाबा ने करेक्शन दिए, ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, चित्र में डालो, सीढ़ी के चित्र में। तो कलयुग में आप देखेंगे कितनी छोटी छोटी वो चित्र है, क्या क्या होता है। लास्ट का तो दिखाया कैसे उस समय मुझे याद है मोरारजी देसाई थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और बहुत भारत में धन की कमी थी, सोना जैसे खत्म हो गया था एकदम, तो वो अमेरिका से भीख मांगने गया। तो उसमें दिखाया है कि वो कांटों की सैया पर लेटा हुआ है और कटोरा लेकर के, और अमेरिका की वो टोपी दिखाई है, वो उसको भीख दे रहा है, क्योंकि गेहूं नहीं थी, पानी नहीं था और बिल्कुल अकाल पड़ गया था, तो गेहूं अमेरिका से मंगाई, और तो उन्होंने कौन सी गेहूं भेजी, एकदम लाल लाल गेहूं, एकदम लाल जो वो जानवरों को खिलाते हैं, वो भारत को भेजी उस समय, ये 60s की बात है। तो बाबा कहते हैं ये कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है, बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते हैं, अथाह दुख है। ऐसे नहीं कि साहूकार है तो सुखी है, अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती है, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, गरीब तो जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं और साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है ना, फर्क पड़ता है, जितना पैसा देंगे उस अनुसार हॉस्पिटल में स्थान मिलता है। परंतु दुख तो जैसा साहूकार को है वैसा गरीब को होता है, सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है, साहूकार को हॉस्पिटल में संभाल अच्छी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं, बाप ने अनेक बार पढ़ाया है, अपनी दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते हैं व नहीं, कितनों को पढ़ाते हैं, चलो कोई कह नहीं मैं तो पढ़ता हूँ, तो फिर पढ़ाते कितनों को हैं, अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज किसको दुख तो नहीं दिया, श्रीमत कहती है कोई को दुख न दो और सबको रास्ता बताओ, जो हमारा भाती होगा उसको झट टच होगा, देवता बनने वाला होगा उसको झट टच होगा। इसमें बर्तन चाहिए सोने का जिसमें अमृत ठहरे, जैसे कहते हैं ना शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है, तो कोई साधारण बर्तन नहीं चलेगा, सोने का बर्तन चाहिए। उनका बच्चों में मोह रहता है, कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी। शेरनी ने देखा कि उनके बच्चे को कोई ऐसे छेड़ रहा है तो वो उछल पड़ेगी, समझेगी बच्चे को मार न डाले। अब ये जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे किस्सा याद आया, हम पिछले साल नैरोबी गए थे, वहाँ 50 साल हुआ था अफ्रीका सेवा का, तो हम भी नैरोबी गए थे, तो वहाँ नैरोबी के पास मसाई मारा है, बहुत बड़ा नेशनल रिसोर्ट है जहाँ जंगल है चारों ओर और उसमें बहुत जानवर है और उसमें शेर भी बहुत है। तो हमारी गाड़ी को बिल्कुल एक शेरनी थी बिल्कुल किनारे पर, और हमारी गाड़ी को वहां से ले गए का शेरनी को देखो, लेकिन शेरनी हमारी तरफ नहीं देख रही थी। हमने सोचा भाई नहीं तो मनुष्यों को देखेगी तो झपटेगी एवं ऐसे उछलेगी, पर हमारी तरफ देख ही नहीं रहती, वो यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां देख रही थी, और एकदम जैसे मायूस दुखी उनके चेहरे से लग रहा था। तो हमने ड्राइवर को पूछा, वो वहां ही रहते हैं ना, उनको सब मालूम होता है जानवरों का। तो हमने कहा ये देखो शेरनी हमारी तरफ देख ही नहीं रही है और ये केवल वो यहाँ वहां देख रही है। तो उसने कहानी बताई, वो शेरों की भी कहानी बिल्कुल मनुष्यों जैसी। तो क्या कहानी बताई कि वो शेरनी के दो बच्चे गुम हो गए हैं, दो बच्चे गुम हो गए हैं, वो अपने बच्चों को ढूंढ रही है। तो बच्चों को ढूंढ रही है और उसको ये डर है कि इसका जो पति बना शेर उसने ही इसके बच्चों को मारा है, और उस शेर ने जाके दूसरी शेरनी ली और उनके दो बच्चे हैं। तो थोड़ी दूर में देखा शेर और शेरनी और उनके दो बच्चे ऐसे छांव में, पेड़ की छांव में ऐसे लेटे हुए हैं, तो दूर से दिखाई दिया। और ये शेरनी उनके नजदीक नहीं जा रही है जो जिसके बच्चे गुम हो गए, तो क्या ये नहीं जाएगी क्योंकि इसी ने इनके बच्चों को मारा है, क्योंकि दूसरी शादी कर ली दूसरी उनको वो शेरनी मिल गई, तो ये शेरनी अगर जाएगी तो वो शेरनी इनसे लड़ने आएगी, इसीलिए उनके नजदीक नहीं जा रही, वो ढूंढ ही रही है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। मैंने कहा एकदम मनुष्यों की तरह हो गया कैसे वो सौत बन जाती है ना, वो दूसरी हो गई तो फिर कैसे लड़ते हैं आपस में। तो ये इसीलिए तो वो कहानी बताई तो सब हमको, तो मनुष्यों की भी लड़ाइयां ऐसे ही चलती है ना, तो जानवरों की भी ऐसे ही चलती होगी। तो बाबा कहते हैं तो कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी, समझेगी ये बच्चों को मार न डाले। यहाँ भी बहुत है जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है, जानवरों का भी बहुत मोह रहता है, खाली मनुष्यों का नहीं है, बहुत मोह रहता है जानवरों का भी। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है, कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं स्वर्ग में, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं तो बहुत खानी पड़ती है, जो भी पाप कर्म किए हैं एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते सजाएं खाते रहेंगे धर्मराजपुरी में। एक एक जन्म का होगा, एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते सजाएं खाते रहेंगे, फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे। याद में न रहने के कारण विकर्म विनाश नहीं होते हैं। कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर लेते हैं, बच्चों को बाबा कैसे सावधान करते हैं, बच्चे मुरली भी मिस कर लेते हैं। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं, समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं, मुरली की परवाह ही नहीं करते हैं। ऐसे देह अभिमानी बहुत है, वो अपना ही नुकसान करते हैं। दीदी हमारी बहुत ध्यान देती थी, जब भी कोई पार्टी आती थी ना तो बड़ी दीदी वो पार्टी कहती थी हम बाबा से मिले, तो दीदी कहती थी सीधा बाबा के पास जाओगे ना तो बाबा सबसे पहला यही प्रश्न पूछेगा, आज की मुरली सुनी, क्योंकि वो तो ट्रेन से आए और चलो दिन में पहुंचे नहा धोकर के भाई बाबा से मिले, तो आज की मुरली पढ़ी, तो कह नहीं बाबा नहीं दीदी हमने पढ़ी नहीं, तो दीदी कहे पहले जाओ, वो जो नोट्स बनाते थे उस समय तो मुरली इस प्रकार से नहीं फटाफट मिल जाए, तो वो नोट्स बनाते थे, तो ये नोट्स पहले पढ़ो, दीदी भी नोट्स बनाती थी, और ये पहले पढ़ो, ये पढ़ करके फिर बाबा के पास जाओ, नहीं तो बाबा आपसे पहले ही आज की मुरली का प्रश्न पूछ लेंगे। पहले तो दीदी पूछ लेती थी क्योंकि वो तो मुरली तो पढ़ के नहीं आए थे, अभी ट्रेन से ही आए थे और स्नान करके बाबा से मिलना है, तो दीदी पहले उनसे पूछती थी और वो फेल कर देती थी, दीदी फेल फेल ऐसे हंसाती थी, तो फिर उनको कहती थी आप पहले ये सब पढ़ो फिर बाबा के पास जाओ, तो तैयार होके जाते थे, मुरली उन्होंने पढ़ ली थी, ये तो बाबा बहुत ध्यान खिंचवाते थे। बच्चे आज की मुरली पढ़ के आए हो, तो इसलिए देखो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, तो बाबा कहते अपने दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते हैं वा नहीं मुरली, कितनों को पढ़ाते, पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। शेरणी का दूध, तो बाबा कहते हैं यहां भी जो बच्चे मुरली मिस कर लेते हैं, बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं, समझते हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए, मुरली की परवाही नहीं करते, ऐसे दे अभिमानी बहुत हैं, वो अपना ही नुकसान करते हैं, बाबा जानते हैं, इसलिए यहाँ जब आते हैं तो भी पूछता हूँ। बाबा ने कहा मैं पूछता हूँ, बहुत मुरलियां नहीं पढ़ी होगी, कितने दिनों से मुरली नहीं पढ़ी, बाबा पूछते थे, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स हो, पॉइंट्स तो रोज निकलती है ना नई नई मुरलियों में, ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं जो मुरली बहुत दिनों तक पढ़ी नहीं होगी, परंतु धारणा कुछ भी नहीं, ज्ञान नहीं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़े मिलेगा। सत बाप सत टीचर की ग्लानी कराने से कभी ठौर पा न सके, परंतु सब तो राजाएं नहीं बनेंगे, बाबा ये भी जानते हैं, सब तो राजाएं नहीं बनेंगे, प्रजा भी बनती है, नंबर वार मर्तबे तो होते हैं ना, सारा मदार याद पर है, जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उनको याद ही नहीं करते। अब बताओ किसी से कोई छोटी मोटी चीज भी मिलती है उसको भूलते नहीं है, फलाने ने हमको ये दिया, भगवान विश्व का राज्य देता है, बाबा कहते फिर भी उनको याद नहीं करते, तकदीर में ही नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, खाना पीना नहीं खाओ ऐसे भी बाबा नहीं कहते, ये कोई हठयोग नहीं है, चलते फिरते सब काम करते जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ऐसे याद में रहो। हाँ, आशिक माशूक की बहुत फिल्में बनी है, एक फिल्म बनी थी मुझे याद है, मैं बाबा जब कहते थे ना तो मैं देखने गई थी, आशिक माशूक लैला मजनू फिल्म बनी थी, तो वो लैला मजनू में क्या दिखाते हैं, लैला वो कहते मजनू, मैं मजनू कहते हैं लैला लैला वो मजनू मजनू, बस ऐसे ही एक दो को ढूंढते रहते और लैला उसी में खो जाती है और मजनू को देखती है, माना सब इमेजिनेशन है, वो है नहीं उसके सामने लेकिन उसको देख लेते, वो इसको देख लेता है, तो ये सब इतना एक दो को याद करते, पर वो केवल नाम रूप का प्यार है, विकार का प्यार नहीं। तो देखो बाबा ने वही कहा, जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ऐसे याद में रहो, उनका नाम रूप का प्यार होता है विकार का नहीं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने किसको भी पता नहीं है, तुम तो कहते हो कल की बात है, लक्ष्मी नारायण थे इसी भारत में कल की बात है, ये राज्य कैसे करते थे, मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं, माया ने मनुष्यों को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है, अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, पारसनाथ का मंदिर भी है परंतु वो कौन है ये कोई नहीं जानते, मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, अब बाप कितनी अच्छी रीति बातें समझाते हैं, फिर हर एक की बुद्धि पर है कितना वो समझता है, पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले तो ढेर हो जाएंगे, अभी तो कितने ढेर हो गए हैं पढ़ाने वाले, तो पढ़ाने वाला तो एक है, पढ़ने वाले ढेर हो जाएंगे, गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, होता ही जा रहा है ना, गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गेट वे टू हेवन, मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में हैं, तो बाप समझाते हैं सब पुजारी है, पूज्य होते ही है सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में, मनुष्य फिर समझते हैं भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी बनता है, आप ही भगवान हो, आप ही ये सब खेल करते हो, पुजारी भी आप ही बनते हो, पूज्य भी आप ही बनते हो, आप ही ये खेल करते हो, तुम भी भगवान हम भी भगवान, कुछ भी समझते नहीं है, ये है ही रावण राज्य। तुम क्या थे अब क्या बनते हो, बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे क्या बताते हैं युक्ति, बच्चे इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है, मैं अभी डायरेक्ट आया हूँ, ये है पिछाड़ी का दान, मैं आया हूँ डायरेक्ट, तुम ये पिछाड़ी का दान है। कौन सा दान? एकदम सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, मन बुद्धि से तो सरेंडर हो ही सकते ना, एकदम सरेंडर हो जाओ, बाबा ये सब आपका है। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं, देने के लिए बाबा, अगर बाबा को सरेंडर करते हैं तो बाबा कोई लेत नहीं लेगा, वो तो देने के लिए कराते हैं, इनका कुछ भविष्य बन जाए। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, अब वो तो है इनडायरेक्ट, उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, ये भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग में जो दान पुण्य करते वो इनडायरेक्ट, चलो दूसरे जन्म में मिलेगा एक जन्म के लिए, लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं तुम जो शिव बाबा अर्थ करते हो, बाबा की सेवा में लगाते हो, 21 जन्म तक मिलता है, ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तो मैं हूँ डायरेक्ट, अभी तुम जो करेंगे उनका रिटर्न पदम गुणा मिलेगा। सतयुग में तो दान पुण्य आदि की तो बात ही नहीं होती है, वहाँ कोई दान पुण्य नहीं करेंगे। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा पैसे हैं, तो बाबा को कहते हैं बाबा मेरे पास इतना धन है, मैं उसको कैसे सफल करूं, तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाकर के सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब है तो कहेंगे अच्छा अपने घर में ही सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेट वे टू हेवन। स्वर्ग और नर्क है ना, अभी हम नर्कवासी है ये भी कोई समझते नहीं है, अगर स्वर्ग पधारा तो फिर उनको नर्क में क्यों बुलाते हैं? तब का शरीर छोड़ा कहेंगे स्वर्ग पधारा, तो फिर तुम उनको नर्क में क्यों बुलाते हो? स्वर्ग में थोड़ी कोई कहेगा स्वर्ग पधारा, वहां कोई नहीं कहेगा स्वर्ग पधारा, क्योंकि है ही स्वर्ग में, या नर्क में है इसीलिए कहते हैं स्वर्ग पधारा। सत्युग में कोई ऐसे नहीं कहेगा, वो तो है ही स्वर्ग में, पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है, यहाँ पुनर्जन्म नर्क में मिलता है। ये बातें भी तुम समझा सकते हो, भगवानोवाच माम एकम याद करो, क्योंकि वो पतित पावन है, मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। भल स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, पर नंबर वार मर्तबे तो होते हैं ना, बहुत बड़ी मंजिल है। कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए, कुमारियां हाथ उठाओ, हाँ देखो कितनी कुमारियां हैं, सर्विस का बहुत जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगे, कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म लिए उद्धार कर सकती है, 21 कुल का उद्धार। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला इस पुरानी दुनिया का अंत है, बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना चाहिए, बाबा ये सब आपका है, इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा की युक्ति बाबा बताते कैसे बनेंगे। बाबा ये सब आपका है। हाँ बाबा कहेंगे संभालो आप, लेकिन मेरा समझ कर चलो, ट्रस्टी होके चलो। इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। दूसरा, मुरली कभी भी मिस नहीं करना है, मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। ये देह अभिमान है, मुरली जरूर पढ़नी है। हाँ सब पढ़ते हैं ना मुरली, है कोई जो नहीं पढ़ता है? मुरली हाथ उठाओ, कोई नहीं। देखो दो तीन हाथ उठा रहे, मुरली नहीं पढ़ते हैं। समझा कि नहीं प्रश्न? आजकल तो मुरली तो बहुत सहज मिल जाती है क्या, एकदम सहज है, आपके मोबाइल में ही आ जाती है, तो भी मुरली नहीं पढ़ते। देखो दो तीन ने हाथ उठाया, ये तो बाबा कहते श्रीमद के खिलाफ है। तो बाबा कहते हैं मुरली जरूर पढ़नी है। वरदान, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हैं, पहले स्व परिवर्तक, वो सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, नहीं, दूसरा बदले या न बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। जो ओटे सो अर्जुन, जो पहले कहे मुझे बदलना है, वो अर्जुन। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। क्योंकि सच्चा जो सोना होता है ना, वो मोल्ड हो सकता है, जिसमें बहुत खाद पड़ी होती है सोने में वो बहुत हार्ड होता है ना, पर सच्चा सोना तो बहुत सॉफ्ट होता है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। ये तो मुलमा है 24 कैरेट के बोले 9 कैरेट ये काला पड़ जाएगा, बाबा कहते उसकी क्या वैल्यू है, रियल गोल्ड की वैल्यू है। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। तो आज का इशारा है, बाप समान बनना है व बाप के समीप जाना है तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न करे, स्वप्न में भी वार न करे कामाशत्रु। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप, आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी के लिए बहुत अति आवश्यक सूचना दी जा रही है, सभी कृपया ध्यान से सुनेंगे, कोई भी उठेंगे नहीं। आप सभी को पहले दूसरी सूचना, आज क्लास की टोली पांडव भवन के लीची के पेड़ की मिल रही है। आप देखते होंगे ना पांडव भवन में जो अपना आप अपनी बाबा की झोपड़ी, उसके सामने कितनी लीची लटक रही थी, लाल लाल, सब सबका आंखें लग जाती थी, लेकिन बाबा को भोग भी लगना था, इसीलिए वो लीची आज सबको मिलेगी टोली। जो सेवाधारी भाई बहने 2 तारीख तक जाने वाले हैं, वे मुरली के बाद सेवाधारी ऑफिस में मिले। जीतूबाई के पास, जो सेवाधारी भाई बहने 2 तारीख तक जाने वाले हैं, वे मुरली के तुरंत बाद सेवाधारी ऑफिस में मिले। अभी आवश्यक सूचना दे रहे हैं, अभी भट्टी आज से शुरू हो रही है। जो भट्टी वाले आए हाथ उठाए, आ गए सारे। इस बार दिल्ली की भट्टी है, दिल्ली कौन सा आ गई है, साधना बहन कहाँ है, साधना बहन आई है, साधना बहन किंग्सवे कैंप, और दूसरा विकासपुरी, विकासपुरी आ गया है। सब आ गए हैं, सुबह सुबह पहुंचे हैं, कई तो रात को आ गए थे फिर नीचे रुके और सुबह आ गए हैं। तो एक बहुत ही आवश्यक सूचना है, भट्टी सहित सभी भाई बहनों से निवेदन है कि अभी गर्मी के दिन होने के कारण कितनी लू चल रही है, नीचे तो बहुत जबरदस्त लू है, यहाँ फिर भी थोड़ी कम है, फिर भी 35 डिग्री तक तो चली जाती है, चला जाता टेम्परेचर। तो अभी गर्मी के दिन होने के कारण पानी की बहुत बहुत कमी है, गर्मियों में पानी की बहुत किल्लत होती है, इसलिए सभी बर्तन कपड़े धुलाई के लिए जितना दे सके पानी, जितना मना कम से कम यूज करे पानी उतना अच्छा है। बर्तन भी धुलाई ना करे, बर्तन तो मैया धोती है, पर कपड़े भी अगर वापस ले जा सकते हो मैले तो अच्छी बात है, पर कम से कम पानी यूज करें। सभी के लिए ये सूचना है, मधुबन निवासी सेवाधारी और भट्टी में आए हुए भाई बहने, तो इसलिए ये ध्यान पर रहे, पानी को कम से कम यूज करें। बर्तन धोते माइयां भी इतना वो बर्तन धोती है, पानी बहता रहता है बहता रहता है, और ब्रश भी करते पानी बहता रहता है, तो थोड़ा कम यूज करें स्नान के लिए भी, कपड़ों के लिए भी, क्योंकि दूर दूर से टैंकरों से मंगाना पड़ता है, इतना नहीं है पानी तो बहुत दूर से मंगाना पड़ता है पैसा खर्च करके, इसीलिए थोड़ा ध्यान देंगे, पानी कम से कम यूज करें। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद जो भट्टी में आए हुए भाई बहने वो सब बैठे रहेंगे। आपको आज का प्रोग्राम भी